समय सार परमागम की, जिसमें कहा गया है कि भगवान आत्मा अवध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष और असंयुक्त भावों से युक्त है। जो ज्ञान का अंश इस आत्मा को इन भावों से युक्त देखता है उसका नाम है शुद्ध नय, और वो शुद्ध नय भूतार्थ है। तो मैंने किसने बताया था विस्तार से, भूतार्थ का अर्थ प्रयोजन भूत होता है। भूतार्थ का अर्थ हम ये कह देते कि वो है, और अभूतार्थ का अर्थ ये है कि वो नहीं है। तो जो व्यवहार नय का जो विषय है उसको हम इनकार करते हैं, इसलिए वो असत्या, मतलब वो हमारा जो मुक्ति का सम्मा दर्शन की प्राप्ति का प्रयोजन है उसकी दृष्टि से अभूतार्थ है। ये सब नक्शा ये जानना भूतार्थ है कि अभूतार्थ है, बोला क्यों? तो जब हम कहें कि अभूतार्थ है तो उसका अर्थ ये नहीं कि इसकी सत्ता जगत में नहीं है। सत्ता तो जगत में है, और जिसकी सत्ता इस लोक में है वो सब पदार्थ जानने के लायक हैं। क्यों? तो उनमें प्रमेयत्व नाम का एक गुण है। नहीं तो फिर वो जानने के जानने ही में नहीं आते, और होते ही नहीं तो जानने में कैसे आते, और जानने में नहीं आते तो आत्मा की सर्वज्ञता ही सिद्ध नहीं होती। तो सर्वज्ञता तो भगवान आत्मा का स्वभाव है, कोई विभाव नहीं है। फिर भगवान आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति जो है वो निश्चय नय से है, व्यवहार नय से नहीं है। कैसा? वो अपने को जानना तो निश्चय है, ऊपर को जानना व्यवहार है, ख्याल नहीं ना? लेकिन जो सर्वज्ञत्व शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, प्रकाश शक्ति है, ये सब भगवान आत्मा में निश्चय से है ना? तो इसलिए ये सारा पदार्थ ये है। गुरुदेव बोलते ना, जाने लो प्रयोजन बांध से, किस यही प्रयोजन है कि तुम्हारे जानने लायक है, बस खत्म। और जब भी कोई बात आती थी, जैसा इस अखबार में आपके बारे में बहुत उल्टा सीधा लिखा है, तो ठीक है जानवा दे, बस क्यों मैं जान लो, उसमें से ज्यादा विकल्पी तरंग मत उठाओ, उसमें ज्यादा एक्शन रिएक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जानो ही मत, ऐसा है जानवा देवो से क्या से ये ना, तो जान लो छोट में खत्म, है ना? माने विकृति तो जानने के बाद फिर विकल्प जाल खड़ा करना है, उसके बारे में सोचकर उसे राग करना द्वेष करना, इसका निषेध है वास्तव में। देखिए ये जो भूगोल है जिसका वर्णन अभी आप सुन रहे हैं, बता रहे हैं, और आठ दिन से आपको विस्तार से समझा रहे हैं, कभी साहब इसकी क्या है? तो इसको यदि हम नहीं जानेंगे ऐसा, इसका जूनागढ़ में वर्णन नहीं होता तो बहुत दिक्कत इसलिए हो जाती कि हम प्रथमान योग पढ़ते हैं तो उसमें आता कि फला का जीव पूरब विदेह में फलानी कुंडली की नाम की नगरी में वो तो फला जीव चक्रवर्ती था, आदिनाथ का था, बजत दंत नाम का चक्रवर्ती था, कोई था। अब आप क्या करते, कहाँ तो विदेह क्षेत्र है, कहाँ पूरब विदेह है, कहाँ वो धाती खंड है, क्यों? मैंने वो सारे प्रश्न खड़ा करता है ना, तो उसके बिना हमें प्रथमान योग भी पढ़ना संभव नहीं रहता, अचीतम तैत्यालयों की पूजा भी संभव नहीं रहती, क्योंकि इसको लोकेट करना पड़ता है ना, कहाँ है कौन, कितना कीर्तन तैत्यालय है, कहाँ है कैसे है। गुरुदेव श्री एक बात कहा करते थे, जो वो थानकवासी थानकवासी समुदाय में मूर्ति पूजा नहीं है, भगवान में मन डरे मूर्ति विराजमान करके पूजा नहीं करते, मूर्ति की पूजा तो अपन भी नहीं करते हैं, है ना? पूजने मूर्ति की थोड़ी लिखी है, पूजने तो भगवान की लिखी है ना, मूर्तियां नहीं है। तो उनके यहां अकीर्तन तैत्यालय माने, तो कहते थे ये बात क्या, मूर्ति नहीं है कैसे कह सकते? जो आदमी अकीर्तन मूर्ति माने और कृत्रिम मूर्ति नहीं माने ऐसा कैसे? चार निच्छेद है, स्थापना निच्छेद है, तो स्थापना निच्छेद का फिर क्या मतलब रह जाता है, इसका मतलब क्या रह जाता है? तो इसे ये जो अपना मंदिर है ना, ये कृत्रिम है, कृत्रिम माने नकली नहीं, माने ये पहले नहीं था और अपन ने इसे बाद में बनाया है। और देह अकृत्रिम, जिसने किसी ने जिन्हें बनाया नहीं है, अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे। एक भाई मेरे स्वयं से पूछते थे कि उन मूर्तियों में किन के चिन्ह रहते हैं, उन मूर्तियों का किन के चिन्ह रहते हैं। चिन्ह का सवाल क्या, चिन्ह तो आदिनाथ की हो, महावीर की मूर्ति हो, तो उसमें चिन्ह का सवाल होता है क्यों। और जब किसी की मूर्ति होगी व्यक्ति की, तो झगड़ा खड़ा करती है। अब उसने तो किसी की नहीं, बोलो अकृत्रिम तैत्तम तैत्तालयों में जो मूर्तियां हैं वो इतनी लंबाई चौड़ाई लगती है, 500 धनुष की जो भी है, तो वो किसी की नहीं है, इसलिए उसमें चिन्ह का सवाल नहीं है। वो तो जिनेंद्र भगवान किसी की है ना, आदिनाथ की है, किसकी है, अनादिनाथ की है। पहले हम कहते थे कि बुद्ध ने जैन धर्म चलाया, महावीर ने बुद्ध ने बौद्ध धर्म चलाया और महावीर ने जैन धर्म चलाया। तो फिर हमने बहुत मेहनत करी और हम कहने लग गए कि नेमिनाथ पारसनाथ, तीन तीर्थंकरों ने को इतिहास में स्वीकार कर लिया है, इसलिए ये ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं और बाकी के 21 पौराणिक हैं। पौराणिक माने झूठे, उनकी उनकी दृष्टि में, और ऐतिहासिक माने सत्य। इतिहास वालों ने स्वीकार कर लिया है कि तीन तीर्थंकर हुए थे, उनके प्रमाण मिलकर के। इस संदर्भ में ये कहा करता हूं कि इतिहास वालों ने स्वीकार कर लिए तो सच्चे, और पुराणों में लिखे हैं वो झूठे। क्यों, इतिहास वालों ने कैसे बनाया ये इतिहास, क्यों, क्यों शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मिले हैं मैंने जमीन में अंदर गड़े हुए कुछ पत्थर के टुकड़े मिले हैं, और जिन पर ये लिखा था, क्यों, किसने लिखाए थे, वो जो 7 विष्णुओं में पारंगत थे उन महाराजाओं ने, तो किनके लिखाए थे वो शिलालेख, कौन लिखा था है? बोलो, यहां शिलालेख आपने मंदिर के अंदर डाला तो महाराज ने लिखाए होंगे, क्यों, तो राजी देसी ग्रस्तों ने ही लिखाए है ना। एक आदमी ने तो ऐसा प्रश्न किया था दीसाई भग मार में कि ये जो राम और रावण की लड़ाई भई ना, और राम जीत गए, उसके बाद रामायण लिखी गई, इसलिए सारे अवगुण रावण में हो गए और राम में सारे गुण समा गए। यदि रावण जीत गया होता और राम हार गए होते तो रामायण लिखी जाती, और सारे गुण रावण में होते और सारे दोष राम में होते, क्योंकि तो जीते हुए राजाओं के बाद में उनके अन्नाइयों ने लिखे है इतिहास, शिलालेख उनने बनवाए हैं। अशोक का शिलालेख मिल गया, क्यों, उसने दिग्विजय की और बाद में अपना शिलालेख गाड़ा, किसने गाड़ा, तो वो क्या लिखेगा, कौन महान है, अशोक महान है, कि जिसको उसने मार डाला वो महान था। मैंने इन रागी देसी लिखों के लिए कोई पत्थर के टुकड़े जमीन में मिल गए, उनसे बना हमारा इतिहास, और वो सच्चा, और हमारे बीतरागी संत नग्न दिगंबर जिन्होंने जीवन भर झूठ नहीं बोलने की प्रतिज्ञा की थी, क्यों, उनके में लिखा हुआ वो हो गया हमारे लिए पौराणिक माने काल्पनिक झूठा कहीं नहीं। तो हमने बहुत मेहनत करी तो हम कहने लगे कि नहीं नहीं हम नेमिनाथ तक पहुंच गए। फिर कहे कि क्या हुआ, इसमें कभी मजा नहीं आया, 2500 वर्ष पुरानी रहे, 5000 वर्ष पुराना हो गया जैन धर्म, तो कहा नहीं नहीं हमारे तो 24 तीर्थंकर हैं, और पहले तो आदिनाथ है, समझ में नहीं जानते, और वेदों में भी लिखा है, और उनने भी 8 में अवतार के रूप में ऋषभ अवतार को स्वीकार किया है ना। तो हम आदिनाथ तक पहुंच गए और बड़े गौरव से जान ठोक के कहने लग गए कि जैन धर्म महावीर ने नहीं, आदिनाथ ने चलाया था, उसके फाउंडर आदिनाथ हैं। और हम समझ गए हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, ये सत्य बात है। मैं पूछता हूं कि आदिनाथ ने जैन धर्म चलाया कि जैन धर्म ने आदिनाथ को आदिनाथ बनाया, क्यों? जैन धर्म तो अनादि है ना, तो मैं कहता हूं कि आदिनाथ ने नहीं बनाया था, अनादिनाथ ने चलाया था। क्या मतलब? कि अनादि से तीर्थंकर होते आए हैं और अनादि से इस जैन धर्म का वो प्रतिपादन करते आए हैं। तो ये भगवान की जो अकीर्तन तीर्थालय की में मूर्तियां हैं वो किनकी हैं? अनादिनाथ की है, वो भी अनादि से है ना। अब वो जो मूर्तियां हैं अकीर्तन तीर्थालय की, तब बोलते ना जो भी जाप बोलते करते ना, तीर्थालय नमहार हम क्या बोलते बोलते हैं रोजी ना जाप बोलते हम, चैत्य माने होता है मूर्ति जिन प्रतिमा, चैत्य माने जिनेन्द्र का बिंब जिन बिंब, और चैत्यालय माने उस जिन बिंब जहां विराजमान है उस घर का नाम है चैत्य आलय, आलय माने घर होता है ना। तो ये तुम चैत्य और चैत्यालय का जाप क्यों करते हो? मैंने कोई आलोचना मालोचना नहीं कर रहा हूं, तो जो थोड़ा सा मेरा अब उसको स्पष्ट कर रहा हूं, है ना? क्यों? तो अपने इसलिए तो ये नौ देवता माने ना, पांच पंच परमेश्वरी, फिर जिन प्रतिमा, फिर जिन चैत्यालय, क्यों जिन जिन आगम और जिन धर्म। तो ये नौ देवता माने तो इसमें जो भी छठवें सातवें देवता हैं जो अपने चैत्य और चैत्यालय, समझे ना, जो नौ नौ देवताओं में छठवें और सातवें देवता है। लेकिन अभी देवताओं का अंतर भी समझ लेना, एक तो असिद्ध भगवान उनमें ही शामिल, और अरहंत भगवान है? अब आचार्य उपाध्याय और साधु भी, तो इसमें ही बहुत फर्क हो गया। मानो अपने साधु गुरु हैं कि देव हैं? क्यों? आचार्य गुरु हैं कि देव हैं? उपाध्याय गुरु हैं कि देव हैं? ये नवदेव हमें तो देव ही है, मैंने हमने सबको देव ही मान रखा है। नवदेव पूजन बोलते ना अपने, तो उसने हमने सबको देव ही कहा। लेकिन फर्क है ना, एक छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनि और एक गुणस्थानातीत सिद्ध, इनमें फर्क नहीं है। और अब देखो फिर उनकी मूर्ति, अब ये अपना छठवां देव है जो निश्चित रूप से जड़ पदार्थ की बनी हुई है, ये कृत्रिम भी और ये अकृत्रिम भी। क्यों? वो लत्नों से बनी हो, हीरे की बनी हो, पन्ने की बनी हो, लेकिन वो सब क्या है? आज क्या बोलते ना, आपका बिजनेस क्या है? स्टोन का। क्यों? दबेरी लोग बोलते ना स्टोन का, स्टोन का तो है लेकिन काय का है? कलर स्टोन का, भारत स्टोन का, हीरा बनना क्यों नहीं बोलते हो? क्यों? कि हम रेल में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, अब किसी को पता चल जाए कि हम हीरे के व्यापारी हैं और पीछे लग जाए तो स्टोन में तो संगमरमर भी जाता है वो साधारण पत्थर भी जाता है, तो किसी के भी बने, मूर्ति तो आगे स्टोन की बनी ना, धातु की बनी ना, तो बेजिन बिन में मतलब समझ लीजिए कि धातु निर्मित मूर्ति है ना, जिन बिंब है ना, और जिन मंदिर उसी से वो भी बना, जिस संगमरमर से मूर्ति बनी वही संगमरमर है डर रहा उससे वो माना। अब जिन बिंब और जिन मंदिर दोनों देव है ना, नवदेवों में तो दोनों का अंतर बताऊं थोड़ा। एक के चरणों में हम अपना माथा रखते हैं और दूसरे की छाती पे हम अपने चरण रखते हैं, नहीं आया समझ में? मंदिर में आप आते हैं ना तो अपने पैरों को नीचे रख जाते होंगे क्यों? धो के आते हैं, सब परम पवित्र बना के लाते हैं, लेकिन आते तो उस मंदिर में ही है ना, तो मंदिर भी देवता और तो मूर्ति भी देवता, तो सबे धान बारा पसेरी मत तोलना। जैसा व्यवहार तुम मंदिर के साथ करते हो वैसा मूर्ति के साथ करोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्यों? तो मैंने कहने का मतलब है तो सब नवदेव में, लेकिन वो देव देव में भी जो फर्क है उस वो भी अंतर हमारे ख्याल में होना चाहिए। तो वे अतीतम जिन बिंब बहुत है, और भरत चक्रवर्ती ने बनाए थे कैलाश पर्वत पर, तो वो तो वो तो अपन चल रहे कहते थे कैलाश पर्वत पर दर्शन करने के लिए, क्यों कैलाश जी मिलेंगे वहां को नहीं, वो तो कृत्रिम थे, वे अकृत्रिम नहीं थे, वे तो बनाए हुए थे। तो जो बनाए हुए होते हैं वे कृत्रिम, और जो बिना बनाए हुए हैं वे अकृत्रिम। और ये चैत्यालय कहाँ कहाँ है ये जानने के लिए सारा ढाई दी कि तीन लोग, क्योंकि तीन लोग मंडल विधान है ना, तो तीन लोग का मतलब तीन लोग में जहां जहां वो अकृत्रिम चैत्यालय है वहां वहां अपन कहते हैं ना कि इंद्र जो है देवलोक है वो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने जाते हैं। अब देव गति तो अनादि की है, और आदिनाथ के तो आदि है ना, ये तो आदिनाथ है ना, अनादिनाथ तो नहीं है ना, सबके सबसे शुरू के सबसे पहले है, लेकिन आदि है ना उनकी, स्टार्टिंग है ना। तो वो जो देवगति अनादि की है, तो वो जहां वंदना करने जाते हैं वो मंदिर वे मूर्तियां भी अनादि की होनी चाहिए। तो जब तीन लोग मंडल की हम बात करते हैं, तो तीन लोग में जहां जहां चैत्यालय हैं उनकी बात समझने के लिए तो ये नक्शा भी जरूरी है, वो भूगोल भी जरूरी है, प्रथमान योग की कहानियां पढ़ेंगे तो उनमें लिए स्वर्ग नरक भी जरूरी है। तो मैं ये सर्वार सिद्धि गया, कहां गया ये सर्वार सिद्धि तो बतानी पड़ेगी ना, इसलिए तो वो नक्शा नहीं है तीन लोग का, यहाँ सर्वार सिद्धि में यहाँ गया, यहाँ मोक्ष में गया, ऐसा बताएंगे ना कि दूसरे स्वर्ग में गया, ये पहले स्वर्ग में गया, ये पहले नरक में गया, क्यों? तो अपन तो मध्य लोक में है, तो मध्य लोक में तो कृत्रिम जिन चैत्यालय है, कृत्रिम भी है अकृत्रिम भी है, लेकिन अधोलोक में और ऊर्ध्व लोक में तो कृत्रिम है ही नहीं, वहां तो कोई मंदिर बनवाते ही नहीं, तो वहां अकृत्रिम है। तो ऊपर देवों के यहां मंदिर होंगे वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, और मध्य लोक में भी है, लेकिन अधोलोक तो नरकों को बोलते हैं, क्यों? तो नरकों में भी मंदिर है क्या? नरकों में जो पहला नरक है उसके तीन हिस्से करते हैं, तो नीचे के हिस्से में ही नारकी रहते हैं, उन दो हिस्सों में भी भवनवासी और बेंतर देव रहते हैं, तो उनके जो घर हैं उनमें ये जैन चैत्यालय है, उन्हें बोलते हैं अधोलोक के जैन चैत्यालय। और जो मध्य लोक के जो ज्योति है ना वो तो ऊपर है, इन्हें बताया ना कितना कितने आ जाए, 500 ऐसे ऐसे कुछ है ना, 790 है, हाँ 790 के ऊपर से ऊपर दस वजन तक है, सूर्य चंद्रमा वगैरह जैसे भी है जो इन्हें बताया विस्तार से। तो ये सब हमारे जैन धर्म को अनादि अनंत है ये सिद्ध करने वाली बातें हैं। अध्यात्म की दृष्टि से इनकी क्या उपयोगिता है, कितने समय बर्बादी है, अध्यात्म की दृष्टि से इनकी ये उपयोगिता है कि जब हमने इतनी इतनी जगह बताई, इतनी जगह दीप बताई, और फिर ये बताया कि यहां से मर के वहां गया, वहां से मर के वहां गया, ख्याल में है ना, तो ये जीव कहीं से कहीं आता जाता है, बनता नहीं है, तो इसमें आत्मा की अनादि अनंतता सिद्ध होती है। और ये बात हमारे दिमाग में घुस जाती है। अमेरिका में बहुत से भाई बहन मेरे से प्रश्न करते हैं, बच्चे होते हैं ना खासकर, वो बच्चे तो मेरे पास कम आते हैं, आते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं अंग्रेजी नहीं जानता, वे हिंदी नहीं जानते, इसलिए संवाद की स्थिति बहुत कम बनती है। लेकिन बच्चों के माँ बाप आते हैं कि साहब हमारा एक प्रश्न है आप जवाब दो, क्या क्या प्रश्न है, तो यहीं से शुरू होता है कि हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि जन्म के पहले आत्मा था और मरने के बाद रहेगा, इसकी क्या गारंटी, इसका क्या प्रमाण है, व्हाट इज द प्रूफ, तो आप हमें बताओ कि हम एक इन्हें हम क्या समझाएं। मैं कहा तुम्हें तो समझ में आ गई ना, तुम्हारा तो प्रश्न नहीं है ना, अरे तुम्हारी समस्या अकेले समझाने की है कि समझने की भी है, बहुत से माँ बाप ऐसे हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ते हैं, समझ गया ना। तो मैं उनको एक उत्तर देता हूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि आपके बचपन में जब इस उम्र के आप थे नैमी चंदी साहब, तब आपके चित्त में ये प्रश्न खड़ा हुआ था क्या? आपने अपने माँ बाप से ये बात पूछी थी क्या? नहीं, हमने तो नहीं पूछी। आप बच्चे पूछते हैं तो क्या मतलब हुआ उसका? क्या तो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, अपन मूर्ख थे? या कुछ और कारण होना चाहिए? क्या कारण है इसका? हम इस पर विचार करें गंभीरता से कि हमने अपने माँ बाप से ये प्रश्न नहीं किया और हमारे बच्चे हमसे ये प्रश्न करते हैं। तो उसका कारण ये है कि हम घर में ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो दादा दादी नाना नानी माँ बाप सब बहुत लबाज में रहता था वहां। और जो जो माँ बाप थे पिता बगैर धंधे पानी में रहते थे, माँ घर के गृहस्थी के काम में रहती थे और दादा दादी खाली रहते थे और बच्चे खाली रहते थे, तो वे दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे। और बिना कहानी सुने बच्चे सोते ही नहीं। अब आपके घरों में क्या है पोजीशन मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे घर में तो आज भी ये पोजीशन है कि छोटे बच्चे हैं उन्हें कहानी सुनाओ नहीं जब तक वो सोते ही नहीं। अब मुझे बहुत परेशान करते हैं तो मैं कहता हूं दादी है सुनो, तो देखा कभी कभी तुम सुना दिया करते। मैंने एक दिन मैंने सुनाया रोजीना को फंसा, हंसा से फंसा। मेरे बस की ये बात नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूं आपके घर में भी होता होगा तो आप क्या कहानियां सुनाएंगे? टीवी में जो देखिए ना सीरियल वही सुनाएंगे ना कि और कुछ? तो वो दादा दादी नाना नानी वो अनेक भवों की महावीर की कहानी सुनाते थे, मारी से लेके महावीर तक की पूरा भव की कहानियां सुनाते थे। तो वो दो वर्ष के तीन वर्ष के चार वर्ष के बच्चे के दिमाग में ये बात वहीं से घुस जाती थी क्या कि आत्मा कहीं से आया फिर मर के कहीं चला गया फिर आया यहां गया फिर स्वर्ग में गया फिर नरक में गया, ख्याल में है ना। तो उससे कई काम एक साथ हो गए, एक तो आत्मा अनादि अनंत उनके दिमाग में घुस गया, दूसरा स्वर्ग नरक घुस गए, फिर वो मुख चला गया, तो मुख कहां चला गया? स्वर्ग में चला गया, नरक। अब आज बच्चे में नरक है इसकी क्या गारंटी है? हम तो मानते हैं यही स्वर्ग है, क्यों? अमेरिका स्वर्ग है और अफगानिस्तान नरक है, क्यों? और अपन मध्यलोक में है, अरे कलकत्ता में ये बंगले वाले अच्छे अच्छे फ्लैट वाले ये स्वर्ग है और वो कच्ची बस्ती क्यों वो नरक है? वो लोग कहते भाई यही देख लो ना स्वर्ग नरक, वो ऐसे बोलने वाले हो गए ना। तो उन बच्चों को पांच वर्ष की उम्र के पहले उनके दिमाग में स्वर्ग नरक घुस जाते थे, उनके दिमाग में मोक्ष घुस जाता था, उनके दिमाग में आत्मा जाता आता है ये घुस जाता था। तो वे फिर अम्मा बाप किसी ये प्रश्न नहीं करते थे कि आत्मा हम जन्म के पहले था या नहीं था, ख्याल में है ना। अब वो दादा दादी का संपर्क खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि माँ बाप दादा दादी के साथ रहते ही नहीं, क्यों? अब उन्हें फुर्सत नहीं है, अब तो मम्मी भी काम करने लग गई है, है? तो सुबह से शाम तक आया के पास रहते हैं, आजकल वो खुद गए कौन से घर कहलाते हैं, बच्चों को रखते हैं वहां डाल देते हैं बच्चों को, है? क्यों? तो उनको वो चीज नहीं मिलती है इसलिए उनके चित्त में ये प्रश्न खड़े होते हैं। यानी कि समय सार तो बहुत कठिन है, बच्चों को क्या समझाएं? अरे बच्चों को ये समय सार पढ़ा दिया ना कि आत्मा अनादि अनंत है और पुण्य का फल स्वर्ग है और पाप का फल नरक है, दोनों का फल मोक्ष नहीं है। वो निगोद से जीवन अधिकार से निकला, खेडाला में पढ़ा काल अनंत निगोद मझार वीतो एक इंद्रिय तंधार निकस भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थो, होगी कहानी शुरू के नहीं। तो ये जो बच्चों में इंटेलिजेंसी बढ़ गई है इसलिए ऐसे प्रश्न होने लग गए हैं, ये बात नहीं है। हमारे जो बचपन में हम उन्हें संस्कार देते थे वो संस्कार देना हम में बंद हो गया, इसलिए ये धर्म संकट खड़ा हो गया है। उसको हमें रिसर्च करके समझना चाहिए। नहीं तो दुनियादारी का भूगोल तो सब स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ ही लेते हैं। अभी तीन लोग मंडल विधान नहीं होता तो ये भूगोल कौन बताता, कौन पढ़ता? क्यों तस्मंद विधान की ये उपयोगिता है कि हमने अपने तीन लोग, हमने विदम्बू द्वीप, ढाई द्वीप, ऐसे कुछ ये शब्द कान में तो पड़े। ये ढाई द्वीप क्या होता, जम्मू द्वीप क्या होता, क्यों? अब ये प्रश्न तो नहीं रहे, ये आधा काम तो हमारा वहीं निबट गया। आज की स्थिति क्या हो गई है कि माँ बाप तो मारवाड़ी गुजराती, दादा दादी है ना, फिर तो मारवाड़ी में आज बोलते हैं, गुजराती में बोलते हैं, वो तो बेचारे उसमें हैं, और उनके बच्चे समझ लीजिए हिंदी इंग्लिश मिक्सर गुजराती में बोलते हैं, और पोते प्योर अंग्रेजी के हो गए। अब पोतों की भाषा दादा दादी नाना नहीं समझती, और उनकी भाषा वे नहीं समझते, उनका संबंध कट ऑफ हो गया बिल्कुल। बस मैंने ऐसे सैकड़ों माँ बाप दादा दादी को देखा है कि जो यहां से बड़े शौक से अमेरिका जाते हैं, और बच्चे कहते हैं आप आओ आओ आओ, क्यों बुलाते हैं बच्चे मानो आप लोगों को? क्योंकि उन्होंने वहां जाकर के जो वो छह छह आठ आठ बेडरूम के बड़े बड़े बंगले बना के तैयार किए हैं ना, उन्हें दिखाने का भाव होता है। एक तरह पापा को दिखा तो दें कि तुमने क्या क्या जिंदगी भर दो कमरे का मकान नहीं बना पाया, तो हमने देखो क्या ठाटवाट किए हैं, इसलिए वो किसी न किसी तरीके से आपको ले जाना चाहते हैं अपना वो गौरव दिखाने के लिए। और माँ बाप भी जाते हैं कि हमारा धंधा पानी हमने दिमाग हटा लिया, ये सब कर लिया, तो घूमे फिरे जाके होके आए, तो भैया कि तुम्हें छह महीने का बीजा दे, नहीं छह महीने करें हम तो साल भर रहेंगे, बारह महीने का मौसम तो देखना चाहिए ना। और तो बड़ी तमन्नाएं ले लेके जाते हैं, और तो एक डेढ़ महीने में ऐसे भागते हैं प्रतिज्ञा लेके कि द्वारा हे भगवान कभी नहीं आएंगे। 90% मैं आज सब बोलता हूं आपको, हम अपने मुकुल भाई से कहते हैं चलो ना अमेरिका, के नहीं जाऊं दादा मैं नहीं जाऊंगे, मेरे बस नहीं है, मेरे नहीं जाना। कईयों के नाम गिना सकता हूं मैं, तो मेरे मित्र उनके नाम बता सकता हूं, बाकी के बताना झगड़ा हो जाए तो मैं डरता हूं मेरा। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां पर दोनों मियां बीवी काम पे चले जाते हैं, गाड़ी खुद चला नहीं सकते हैं, वहां बसें हैं नहीं, लोकल ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल नहीं है, पर अपनी कार से जाओ आओ तो घर में उसमें कैद हो जाते हैं। टीवी चलाते हैं तो वो अंग्रेजी अंग्रेजी आती है, वो आती नहीं है, वो टीवी भी काम की नहीं है, और बच्चों से बात नहीं कर सकते हैं। क्यों? जिनसे कि उनको हम बैठेंगे मिलेंगे धुलेंगे मिलेंगे खेलेंगे उनसे बात करेंगे, बुढ़ापे में बड़े भी बच्चे बन जाते हैं ना। क्यों? तो अब उनको साथ साथ नरक दिखता है। मैं आपको नाम नहीं बताता हूं लेकिन ये बिल्कुल सच्ची घटना बताता हूं, तुम्हारे राजकोट की है, तुम अंदाजा मत लगाना, नहीं तुम देखो मुश्किल हो जाएगी। राजकोट की घटना है, एक मैं दंपति राजकोट में रहता था और उसके बच्चे डॉक्टर थे और अमेरिका में रहते थे, बहुत बड़े डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट थे। तो यहां पिता को हार्ट अटैक हुआ, अस्पताल में भर्ती करे तो एकदम फोन किया बेटे को, तो बेटा तीन दिन के अंदर कौन था, जब तक पिताजी चल बसे थे, चल बसे। तो उस बेटे को बहुत दुख हुआ कि मैं सबसे बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट, हजारों की जान मैंने बताई, तो मेरे पिताजी बिना मेडिकल हेल्प लिए मरिए क्या? तो अब ये तो सोच नहीं सकते थे कि अपने ही आ जाओ। तो उन्होंने सोचा मम्मी अब मैं तुम्हारे को यहां नहीं रहने दूंगा, मैं तुमको नहीं मरने दूंगा बिना मेडिकल हेल्प के। तो मेडिकल हेल्प से मर जाए अभी है वो अम्मा जी भी हैं, देवी हैं, सब हैं। तो मैं उनके घर ठहरा था, तो अम्मा जी ने कहा आप तो बहुत आप मजे में है ना, बढ़िया। बोले क्या मजे में है, इस जेल में लाके डाल दिया है मेरे को, मैं तीन टाइम प्रश्न सुनने जाती थी राजकोट में, इतने मेरी सब सहेलियां थी उनके साथ में तत्व चर्चा करती थी। अपने मुमुक्षुओं की बात है, गैर मुमुक्षु की नहीं कह रहा हूं मैं। और अब यहां पर जंगल में पड़े रहो, सब बेटा बहू सब चले जाते हैं, पर पहाड़ी पे ऐसा बढ़िया बंगला है करके बसात बात है, क्या करें सांस सांस करता है। अब वो समझते हैं कि हमने स्वर्ग में ले आया अम्मा को, पर अम्मा को लगता है कि हम नरक में आ गए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा दादा दादा दादी और बचपोतों का जो संवाद टूट गया है, सबसे बड़ी हमारी संस्कृति को, धर्म को सबसे बड़ा खतरा हो गया है। इसके बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। एक उपाय तो ये है कि उन बुढ़े बुढ़ियों को अंग्रेजी पढ़ाओ, और दूसरा उपाय ये है कि उन बच्चों को मातृभाषा पढ़ाओ थोड़ी बहुत। अब बुढ़े बुढ़ियों को तो पढ़ा नहीं सकते, क्यों? अब तो एक ही उपाय है कि कम से कम अपने बच्चों को हम मातृभाषा सिखाएं। और ये बात मैं अमेरिका में हर जगह जाकर के कहता हूं लोगों से कि देखो, तुम्हें यदि बिल्कुल समाप्त नहीं होना है ना, थोड़े बहुत इंडियन बना रहना है और जैनी बना रहना है, तो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसी संदर्भ में मैं एक बात और कहता हूं, बहुत मार्मिक है, कि भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष पहले हुए थे, तो हमारे और उनके बीच में 125 पीढ़ियां हो गई। मालूम 20 वर्ष में एक पीढ़ी बदल जाती है। और जब कोई आदमी 100 वर्ष की उम्र पाता है ना, तो वो 5 पीढ़ियों के देख लेता है। आ जाता है, आप देख लो बच्चे, और वो अपने बोलते हैं ना, पोता हुआ, पंती हुआ, फिर संती हुआ, तो सोने मोने की नशेनी मशीन पे क्या चढ़ाते हैं, कुछ करते हैं ऐसा। इसका मतलब 100 वर्ष की उम्र तक जो बाता वो 5 पीढ़ियां देख लेता है, इसका मतलब 100 वर्ष में 5 पीढ़ी बदल जाती है। तो 2500 वर्ष में कितनी पीढ़ियां हो गई? तो भगवान महावीर के जमाने में हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी से माने 125वीं पीढ़ी के पूर्वज भगवान महावीर के जमाने में रहे होंगे, ठीक है। अब जब भगवान महावीर के जमाने में रहे होंगे, और महावीर भगवान से समझ कर वो ज्ञानी बने होंगे, उनने जैन तत्व ज्ञान सीखा होगा, और उन्होंने लगातार, बाप ने अपने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, बेटे ने अपने बेटे को, वो जैन धर्म की संपत्ति संस्कार दिए, जैन धर्म का तत्व ज्ञान दिया। इसका तो कारण है कि आज हमारे पास ये संपत्ति है। और कहते हैं उनके जमाने में तो पूरा देश जैनी था, अब जैनी इतने कम रह गए। तो जिस पीढ़ी ने, जिसकी पीढ़ी ने एक पीढ़ी में ये गलती कर दी, क्या गलती? कि अपने बच्चों को ये धार्मिक संस्कार और जैन तत्व ज्ञान नहीं दिया, उसका दंड एक पीढ़ी को नहीं भोगना पड़ा, उसके आगे की सभी पीढ़ियों में से वो गायब हो गया। समझे? कितनी बड़ी कितनी छोटी लापरवाही और कितना बड़ा दंड। महाभाग्य से हमारी पीढ़ी में, 125 पीढ़ियों में ये गलती नहीं हुई, इसलिए आज हमारे मुख में नमोकार महामंत्र है, ख्याल में है ना, सभी तीर्थंकरों के नाम हैं, जैन तत्व ज्ञान है, 7 तत्व हैं, 6 द्रव्य हैं। क्यों? कहीं ऐसा ना हो जो गलती हमारी 125 पीढ़ियों ने नहीं की, वो गलती हम कर बैठे और उसकी सजा हमारी आगामी सभी पीढ़ियों को भोगनी पड़ेगी, ये सोचने की बात है। दूसरे बात कि कोई भी आदमी, उसके पास कुछ भी न हो तो भी कुछ ना कुछ कमा कर अपनी पीढ़ी को दे जाना चाहता है। यदि हमारे पास 1,00,000 रुपया थे, हमें बाप दादों से मिले थे, तो हम चाहते कि अपने बेटों को 10,00,000, 1,00,000 बना करके दे के जाएं। ये हर एक आदमी का प्रयत्न रहता है, और दे जा पाए कि नहीं दे जा पाए तो भाग्य की बात है, लेकिन मन में हर एक के दिमाग में ये भाव रहता है कि मैं जिंदगी भर किराए के मकान में रहूं, लेकिन बुढ़ापे में कम से कम 2 कमरे का मकान तो अपने बेटे को लेके दे जाऊं, उसे तो किराए में नहीं रहना पड़े, किराएदार जिनका मकान मालिक बहुत परेशान करते हैं। क्यों? ये भावना रहती कि नहीं दे जा पाए, नहीं दे जा पाए वो अलग बात है। तो जो भी संपत्ति हमारे पास है, वो हम अपनी आगामी पीढ़ी को दसगुनी करके दे जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो हमारे लिए नमोकार मंत्र मिला, 24 तीर्थंकरों के नाम मिले, जैन तत्व ज्ञान मिला, ऐसा आचरण मिला, कि बाजार से निकले और मांस टंगा हुआ देख लें तो उस दिन खाना नहीं खपता है, बगल में कोई आदमी शराब पी के बैठ दे तो हमें वोमिटिंग होने लगती है। ये जो हमारे लिए मिला है आचरण, ये संपत्ति है या विपत्ति? इसे आप अपनी संपत्ति मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कि वो रुपया पैसा ही संपत्ति है? बोलो, यदि वो रुपया पैसा दस गुना करके दे जाना चाहते हैं और यदि ये संपत्ति है तो इसे दस गुना करके दे जाने का भाव क्यों नहीं है? हम तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे जमाने में ऐसे विद्यालय नहीं थे, ऐसे साधन नहीं थे, वीडियो कैसेट नहीं थे, ऑडियो कैसेट नहीं थे, क्यों? और आज के जमाने में तो इतने साधन हो गए, हम अपने बच्चों को तो विद्वान जैन धर्म का पूरा परिचय कराएंगे, ऐसा संकल्प क्यों नहीं आता हमारे चित्त में? इसका मतलब आप इसे संपत्ति नहीं समझते। आना चाहिए ना, दे जा पाए और नहीं दे जा पाए ये अलग बात है, लेकिन ऐसी भावना तो अंदर में होनी चाहिए ना। हमारी तो ऐसी भावना है, देख मुझे मंदिर जाना है, पंडित जी आए हैं प्रवचन सुनने के लिए, तू बैठना दुकान पे, कि मैं भी चलू ना पापा सर, दुकान पे कौन बैठेगा? क्या उन्हें के बंद कर दे, क्या होता है दो घंटे पहले एक चार दिन दुकान बंद कर देगा? ऐसा कहकर उसे उठा करके लाने की कि हमें करना चाहिए तत्न के वहीं बैठाने की करना चाहिए कोशिश? बोलो, मैं नाम फिर नहीं बताता हूं लेकिन मैंने बहुत लोगों से कहा है और आप सब लोगों से सामूहिक कहता हूं, व्यक्तिगत नहीं। मैं कहता हूं कि भाई अपने बड़े बड़े मोक्षों से जो जिस मोक्षों के घर में पूज गुरुदेव के जमाने में जो तत्व ज्ञान था, जो स्वाध्याय था, जो सब प्रवृत्ति थी, अब उनकी संतान में सब गायब देखता। क्यों? तो मैं ये कहता हूं कि आपने अपने बच्चों से ऐसा कभी क्यों नहीं कहा? तरह जी जैसे लोग बहुत कम होंगे, इन्हें कितना कितना कहते थे, हमसे पकड़ के ले जाते थे और कहते पंडित जी इनसे एक हो, इनसे एक हो, इनसे एक हो, मगर तुम हमसे मत कहो, अकेले में कह दो, नहीं तो ये समझेंगे पापा ने करवाई है तो हमारी भी नहीं मानेंगे। कितने लोग हैं ऐसे? मैंने कहा आंख बदल के क्यों नहीं कहते हो? नीतीश भाई तुम कोई मुफ्त में थोड़ी कह रहे हो, तुम सारी जिंदगी पाप करके तुमने किया है, पाप कमाई करके जथरी अपने माथे पे बांधी है और उसके फल में जहां जाओगे भगवान जाने। क्यों? और सारी संपत्ति वो तुम्हें दे जाने वाले हो, मुफ्त में कह रहे हो क्या? लौकिक काम नहीं करे तो उसका लोग देते हो बच्चे को, कहा आजकल क्या क्या देते हैं वो, चॉकलेट, चॉकलेट दूंगा और वो फटाफट करता है ना, क्यों काम? यहां तो तुम उस बच्चे को चॉकलेट दे करके लौकिक काम कराते हो और यहां तुम अरबों की संपत्ति उसे दे जा रहे हो, पाप की गठरी खुद बांध के ले जाएंगे और उसके बदले में तुम हमें प्रवचन में नहीं ला सकते पकड़ के उन्हें? नहीं तू चल, क्यों? यदि तूने मेरा कहना नहीं माना और प्रवचन में नहीं चला तो मैं संपत्ति से बेदखल कर दूंगा और सारी संपत्ति मंदिर के नाम लिखा देगा। ऐसा किसी ने कहा? अपने बेटे से बोला, मुफ्त में कह रहे, वो दुनियादारी के मामले में तो कहा होगा, वो किसी लड़की से प्रेम करने लग जाए, वो कितनी अच्छी हो, सुंदर हो, अपनी जाति की धर्म की हो, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं हो, क्योंकि वो तो अपनी बराबरी की पार्टी नहीं है। और जो आलू जमी नहीं खाने वाले हमें पसंद नहीं है, तो हमारे घर में गड़बड़ नहीं चाहिए, हमको मेहमान आए दिन में रात में सबको भक्त भक्त खिलाए, हमें तो ऐसी लड़की चाहिए। क्यों? उस लड़की से वो साधु करे तो आप धमकी देने को तैयार हैं कैसे? क्यों संजीव? मैं संपत्ति से बेदखल कर दूंगा। लौकिक मामले में हमारी बात नहीं माने तो हम कड़े से कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तैयार हैं कि नहीं? लेकिन इसके लिए कभी किसी ने इस लेवल तक कहा और फिर उसके बेटे ने नहीं मानी हो तो हमसे बात करो। तुम मुफ्त में थोड़ी कह रहे हो, पर नहीं आप को तो मानेगा, हम तो मुफ्त में कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ है नहीं कि तुम्हें ये नहीं देंगे। हम कह रहे हैं कैसे तुम्हें प्रवचन में नहीं आने देंगे, तो बहुत अच्छी है। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप इसे संपत्ति समझते हैं, ये संस्कार समझते हैं, तो हर कीमत पर उसे देने की कोशिश क्यों नहीं की? ऐसे इतने बड़े बड़े, इतने बढ़िया मंदिर बनाते जा रहे, तीर्थ बनाते जा रहे हैं, और तुम्हारे घर में है कोई संभालने वाला क्या? नहीं, ये सब गांव में बहुत हैं, गांव में बहुत हैं। पिताजी का स्वर्गवास होता है, हमारे पास कई केस ऐसे आए हैं कि पंडित जी एक प्रश्न है कि क्या है कि पिताजी के तो आपको जानो कितने विद्वान थे, कितना स्वाध्याय करते थे, दो कमरे अलवारी में शास्त्र शास्त्रों से भरे पड़े, क्या करें, हमारी समझ में नहीं आता क्या करें, पड़े रहें तो नहीं, वो तो ठीक है लेकिन करें क्या? आप कहो तो हम तोड़े मल हमारे भवन में देंगे। सत्य, मैं सत्य बोलता हूँ, कहीं उन्होंने भिजवा ही दिए, तो मैं कहता हूँ कि हाँ जरूर भिजवा दो। तो पिताजी के स्वास्थ्य भिजवा रहे तो स्वास्थ्य भिजवाने के साथ उन्हें रखने के लिए अलवारी भिजवा देना, और अलवारी जहाँ रखें वो कमरा बना देना। क्यों ठीक है ना? तो तुमको उनका वो कमरा चलता है, वो अलवारी चलती है, समझे ना? पुराने जूते कपड़े तक चलते हैं, उनके गहने सोना सब चलता है, सिर्फ अकेले शास्त्र ही ऐसे हैं कि जिन्हें तुम्हें देश निकाला देंगे। है कि नहीं ऐसी प्रति? सोचो तो तुमने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो वे शास्त्र जोड़ते, उस लाइब्रेरी को बढ़ाते कि घर से निकालने की कोशिश करते, किसका अपराध है कि तुम्हारे ही साथ उन तुम्हारे हर निशानी का मिटा देना चाहते हैं वो घर से? क्यों? और तुमने तो बड़े शौक से बनवाया था उस घर को तोड़ तार से, क्या नया बनाएंगे? कोई निशानी रहना चाहे बुढ़े बात की, नहीं तो याद आ जाए। क्यों? सब पाप की कमाई सब पचती है, लेकिन जो थोड़ी अच्छाई है बस उसे निकालने के चक्कर में। मैंने कहा भैया घर में पड़े रहने दो ना, अलवाई पड़ी रहने दो, ये कमरा छोड़ दो ना बाप के नाम पर। क्यों? कहें आज के जमाने में आप समझते नहीं है, बम्बई जैसे शहर में, कलकत्ता जैसे शहर में एक कमरे की कीमत क्या होती है? उस शास्त्र की भी कोई कीमत होती है। मैंने कहा बेटा जब तुम बुढ़ापे हो आ जाएगा ना तुम्हारा, और जब बाद डॉक्टर बेड रेस्ट बताएगा तब तुम क्या पढ़ोगे? एक एक किताबें हमसे मांगोगे और उस वक्त किताब तुम्हें मिलेगी नहीं। क्यों? अभी नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, लेकिन खुदा ना खासा तुम्हें 10 साल तक बेड रेस्ट की मिलेगी लगातार, तो ऐसे बहुत भाग्यशाली लोग हैं। आप हंस रहे हो? हम भाग्यशाली, बाबू भाई खुद कहते थे कि डॉक्टर साहब यदि मैं बीमार नहीं होता तो घोड़े जैसा दौड़ता रहता, मैं आप आत्मा कल्याण की बात सोच नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था, मुझे तो मैं पुण्य का उदय मानता हूं कि 4-6 साल ऐसे मिल गए हैं क्या, तो मैं यहां शांति से रह करके प्रवचन सुनता हूं, क्लासें सुनता हूं, विद्यार्थियों को देखता हूं तो मेरा हृदय प्रफुल्लित हो जाता है, पर मैं इस सब देश के शांति से मैं आत्मा की बात सोच सकता हूं, यदि ये नहीं हुआ होता तो ना समाज मुझे छोड़ती और ना मैं भी छूटता, मैं अंत तक मरते दम तक घोड़े जैसा दौड़ते ही रहता। तो मैं बोलता हूं कि पुण्य की वजह से 10 साल का बैठ देश मिल जाए तो कोई पाप की बात करता हूं? जैसे तो दुकान पर जाना बंद, गुर्दे बोलते थे ना अपने प्रवचनों में कि भैया तू यदि गवर्नमेंट नौकरी कर रहा होता तो 60 वर्ष में रिटायर्ड हो जाता, और तुमने ऐसा क्या पाप किया है कि 80 वर्ष में रिटायर्ड नहीं होता है? तो ये व्यापारियों को रिटायर्ड होने का उपाय ये कही है, बेड रेस्ट। हे भगवान मैं तो कहता हूं ऐसी बीमारी हो जाए, टांग टूट जाए, कि फिर आपके प्रचन में नहीं आ पाएंगे। अरे नहीं आए, घर पे बैठ के स्वाध्याय तो करेंगे, कि पैर में जो भौंरी पड़ी है वो तो थोड़ी बंद होगी। सोचो तो भाई जो बात मैं कह रहा हूं वो बहुत गंभीरता की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है, समझे ना? इसके बिना हमारा कोई निस्तारा नहीं है। जब गोदगा जी ने हमारा टोडा मल हमारा भवन तैयार किया था बना करके, जब बिल्कुल बन गया, अप टू डेट हो गया, अब मंदिर की प्रतिष्ठा हो गई बेदी की, और वो हमने सब उद्घाटन हो गया, गुरुदेव कर रहा है, उसके बाद मैं आया और मैं उसमें अपने आराम से काम करने लगा। तो मैंने कहा कि ये तो ऐसे ही हुआ ना कि जैसा स्वर्ग में इंद्र देवता होते हैं और नीचे अच्छा महीना पहले आके सौधर्मेंद्र और नगरी की रचना करता है और ये करता है ये करता है, तो ऐसा मेरा तो अवतरण हुआ है यहाँ, ये सब पहले बना बना के तुमने तैयार किया, इसका पूरी तरह से सदुपयोग नहीं करूंगा। तुम्हें तो यहाँ मंदिर का हमेशा में पड़ा रहना है, यहाँ बैठने को जगह मिलनी, कई दफे कहा बैठ के कुछ गरी थी बेटा प्रश्न सुनने आती कि तुम्हें क्या फायदा इसका, बोलो फायदा तो उसे है कि जो ले, मेरे कहने का मतलब है इस जिसके लिए ये काम है। तो मेरे कहने का मतलब हमारी आगामी पीढ़ी में ये संस्कार रहे कि तत्व ज्ञान है नवीन चंदी साहब आपने कितना कितना किया, कितना करते हैं, अब मुझे नहीं मालूम आपके बाबुओं में कितना है और पोतों में कितना है, सोचना गंभीरता से कह रहा हूं मैं। जो मेरे मित्र हैं उनका नाम ले लेता हूं, जिनसे बाकी का नाम नहीं लेता हूं, मैंने बोला नहीं डर लगता है, आस पास ही सब देखता हूं, अपने बहुत घनिष्ठ मित्र मोक्षु भाई तो उनकी आगामी पीढ़ी में बिल्कुल साफ है मामला। तो मैंने कहा तुम तो ब्रह्मचारी जैसे हो गए, जैसे ब्रह्मचारियों की आगामी पीढ़ी नहीं होती है, धर्म के हिसाब से तुम्हारी भी कोई आगामी पीढ़ी नहीं है। क्यों अचल जी तुम क्या करोगे, तुम बना बना के चले जाओगे तो क्या होगा, तुम्हारे बच्चे बच्चे तो हैं नहीं पालचंद जी। तो बहुत गंभीरता से सोचने की बातें हैं, आज ये सब प्रकरण चल गया इसलिए मैंने आपसे बात की, और 14वीं ज्यादा सुबह के लिए ही छोड़ता हूँ।